नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के दृष्टिगत ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट, चंद्रभागा पुल और आस्था पथ परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के प्रमुख शहरों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र और आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी और चंपावत जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 36वीं वाहिनी मुख्यालय लोहाघाट में सेवानिवृत्त दिवस का आयोजन। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान डॉक्टर रावत ने चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को यात्रा को लेकर राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आधुनिक चिकित्सा इकाई स्थापित कर दी गई है, जिनका शुभारंभ इसी यात्रा सीजन में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती के साथ ही चिकित्सकों का पुल भी तैयार किया जा रहा है। इसमें राज्य की विभिन्न चिकित्सा इकाइयों में तैनात चिकित्सकों के साथ ही राज्य मेडिकल कॉलेज एम्स ऋषिकेश के चिकित्सकों के साथ देशभर के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके अलावा डॉ रावत ने केंद्रीय मंत्री से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य की ओर से भेजे गए प्रस्तावित नए कार्यक्रमों के संचालन के लिए अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया। इस दौरान डॉ रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को चार धाम यात्रा पर आने का निमंत्रण भी दिया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सचिवालय में ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट, चंद्रभागा पुल और आस्था पथ के निर्माण व सौंदर्यकरण से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कार्यदायी संस्था सिंचाई विभाग को निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारियों की समिति द्वारा दी गई अनुशंसाओं को परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। मुख्य सचिव ने सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा पर पूरा करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि हरिद्वार में आगामी कुंभ मेले के दृष्टिगत इन परियोजनाओं पर लगभग 168 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के समापन के बाद प्रमुख घाटों, मार्गों और आसपास के क्षेत्रों में जिला प्रशासन विशेष सफाई अभियान चला रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि नगर निगम की टीमों सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों को भी सफाई कार्य में लगाया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी इस नगरी को शीघ्र ही पूरी तरह स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन घाटों पर अभी अतिरिक्त सफाई की जरूरत है, वहां लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार एक पवित्र और धार्मिक नगरी है, जिसे स्वच्छ रखना प्रशासन के साथ ही प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की कि वे अपने आसपास गंदगी ना फैलाएं और स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें।
जैसा आप जान रहे हैं कि हमारे पूरे जनपद में पिछले 3 महीने से सफाई अभियान चल रहा है और अभी रिसेंटली जो शारदीय कांवड़ यात्रा समाप्त हुई, उसके बाद पुनः हमें आवश्यकता प्रतीत हुई है इस अभियान को पुनः गति देने की। अभी अभियान हमने जब कांवड़ यात्रा खत्म हुई 16 फरवरी के आसपास, उसके बाद से पुनः सभी लोगों को सहभागिता के साथ एक अभियान चलाया जा रहा है। कुछ जगह अभी भी हमने देखा है कि कहीं घाट के आसपास या कहीं मंदिरों के आसपास अभी भी सफाई की काफी आवश्यकता है, उसको भी टेकअप कर रहे हैं और आगे कोशिश ये कर रहे हैं कि लोग इसको अपनी आदत में डालें। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो माँ गंगा की जो पवित्रता है और उसके साथ ही वहाँ साफ सफाई रखने में हमारे यहाँ सहयोग।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरुमीत सिंह से लोकभवन में पुलिस महानिदेशक दीपम सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को चारधाम यात्रा की तैयारियों और आगामी कुंभ मेले के लिए प्रस्तावित सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण की तैयारियों से अवगत कराया। इस दौरान राज्यपाल ने कुंभ जैसे विश्वस्तरीय आयोजन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI और अत्याधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग सुनिश्चित किए जाने पर जोर दिया, ताकि भीड़ प्रबंधन, संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और रियल टाइम मॉनिटरिंग प्रभावी ढंग से की जा सके। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में एडवांस व एकीकृत कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए, जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों, CCTV नेटवर्क, ड्रोन सर्विलांस तथा ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम से समन्वित हो। इससे त्वरित निर्णय लेने और आसपास स्थितियों में प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा राज्यपाल ने चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यात्रा मार्गों, पड़ाव स्थलों व मंदिर परिसरों में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और भीड़ नियंत्रण की पूर्व तैयारियां समय से पूरी करने की भी बात कही।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद ने शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। देहरादून में आवास सचिव एवं आवास आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि परिषद की योजनाएं केवल भवन निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर और आधुनिक आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराए। एक रिपोर्ट।
आवास सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि परिषद द्वारा देहरादून, ऋषिकेश, रुड़की और काशीपुर सहित अन्य नगरों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। इन केंद्रों को इस प्रकार बनाया जाएगा कि आम नागरिक विवाह समारोह, सामाजिक कार्यक्रम और अन्य आयोजनों के लिए कम दरों पर इनका उपयोग कर सकेंगे। इस पहल से मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के परिवारों को काफी राहत मिलेगी। परिषद का मानना है कि इससे सामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को निजी महंगे बैंक्वेट हॉल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। में देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, जसपुर और अल्मोड़ा में भूखंडों और भवनों के आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। इन योजनाओं में चौड़ी सड़कें, हरित पार्क, सामुदायिक केंद्र और अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की तर्ज पर उत्तराखंड में भी लैंड पूलिंग मॉडल लागू करने के प्रस्ताव पर भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। इसके तहत भूमि स्वामियों की सहभागिता से बड़ी और सुव्यवस्थित आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी। इस व्यवस्था से अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगेगी और पारदर्शी योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में श्रीनगर आवास योजना और जसपुर आवास योजना को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने का निर्णय भी लिया गया। आवास सचिव ने कहा कि परिषद का लक्ष्य केवल मकान बनाना ही नहीं बल्कि नागरिकों को सम्मानजनक और सुविधायुक्त जीवन देना भी है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से संतोष थपलियाल।
चंपावत जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईडीपीपी की 36वीं वाहिनी मुख्यालय लोहाघाट से सेवानिवृत्त दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर बल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिजनों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया, साथ ही उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। वाहिनी कमांडेंट संजय कुमार ने बताया कि आईडीपीपी हर साल फरवरी माह में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं और उन्हें दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देने के लिए सेवानिवृत्त दिवस का आयोजन करता है।
फरवरी के महीने में हर साल हम अपने वेटरन वालों के साथ मिलते हैं और एक अच्छा सा आपस में तालमेल करते हैं। किसी की कोई समस्या हो तो वो सुनी जाती है और उसका निवारण किया जाता है, क्योंकि ये वो आदमी है जो आईटीबी की नींव रखी गई थी। आज सेवानिवृत्त हो गए, कोई बात नहीं है। हमने 3-4 जनों के जो 64 के थे भर्ती सबसे सीनियर, उनके एक्सपीरियंस इन नई पीढ़ियों को और जो यहाँ पे हैं, इन्होंने क्या क्या संघर्ष किया और कैसे आईटीबी को आज इतनी ऊंचाई पे पहुंचाया है।
देहरादून पुलिस महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आपके द्वार अभियान चला रही है। इसके तहत विभिन्न थाना क्षेत्रों में स्थित शिक्षण संस्थानों में पढ़ रही छात्रों को साइबर अपराध, महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकास नगर के एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस टीम ने छात्र छात्राओं को घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न, मादक पदार्थ, साइबर अपराध आदि से बचाव के उपायों की जानकारी दी। साथ ही किसी भी अपरिहार्य स्थिति में पुलिस सहायता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 112-10-90 और 181 के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर चर्चा की। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने हरिद्वार में आगामी कुंभ के दृष्टिगत ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट, चंद्रभागा पुल और आस्थापथ परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रदेश के प्रमुख शहरों में आधुनिक सामुदायिक केंद्र और आवासीय योजनाएं विकसित की जाएंगी और चंपावत जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 36वीं वाहिनी मुख्यालय लोहाघाट में सेवानिवृत्त दिवस का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।